हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 4 दिव्य ज्ञान श्लोक क्रमांक 22। यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समःसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कभी बनता नहीं। तात्पर्य, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने शरीर निर्वाह के लिए भी अधिक प्रयास नहीं करता, वह अपने आप होने वाले लाभों से संतुष्ट रहता है। वह न तो मांगता है न उधार लेता है, किंतु यथा सामर्थ्य वह सच्चाई से कर्म करता है और अपने श्रम से जो प्राप्त हो पाता है उसी से संतुष्ट रहता है। अतः वह अपनी जीविका के विषय में स्वतंत्र रहता है। वह अन्य किसी की सेवा करके कृष्ण भावनामृत संबंधी अपनी सेवा में व्यवधान नहीं आने देता, किंतु भगवान की सेवा के लिए वह संसार की द्वैतता से विचलित हुए बिना कोई भी कर्म कर सकता है। संसार की यह द्वैतता गर्मी सर्दी अथवा सुख दुख के रूप में अनुभव की जाती है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति द्वैतता से परे रहता है, क्योंकि कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वह कोई भी कर्म करने में झिझकता नहीं। अतः वह सफलता तथा असफलता दोनों में ही समभाव रहता है। ये लक्षण तभी दिखते हैं जब कोई दिव्य ज्ञान में पूर्णतः स्थित हो। तो हम लास्ट लाइन से चालू करते हैं इसके ऊपर चर्चा करना। दिव्य ज्ञान में व्यक्ति जो पूर्ण स्थित है उसका मतलब क्या है? आप सब लोग समझ गए होंगे, दिव्य ज्ञान का अर्थ है व्यक्ति को ये अनुभूति होना, ये बहुत प्रगाढ़ श्रद्धा होना। एक और अद्भुत बात है इस संबंध में कि जितनी प्रगाढ़ श्रद्धा होगी उतनी ही अधिक अनुभूति भी होगी, और जैसे जैसे अनुभूति होगी वैसे वैसे हमारी श्रद्धा और प्रगाढ़ होती चली जाएगी। कि हम लोग कृष्ण के अंश हैं, कृष्ण के दास हैं, भगवद गीता से सुनकर हमें पूर्ण विश्वास करना चाहिए, करने का प्रयास करना चाहिए। और दूसरा बात, हम पहली लाइन पे अगर ध्यान दें तो देखिए, इस जगत में हमको दुख मांगने नहीं पड़ते हैं। इस चीज को श्रीमद् भागवत में बताया गया है, दुख वदन्यतः सुखम। जैसे व्यक्ति को दुख मांगने नहीं पड़ते हैं फिर भी दुख आते हैं, उसी तरह से हमारे सुख भी पूर्व निर्धारित हैं। दूसरे शब्दों में, और एक और दूसरी बात इसमें बतानी चाहिए कि भक्त जानता है कि भौतिक लाभ का स्टैंडर्ड क्या है। भौतिक वस्तुएं प्राप्त हो भी जाएं तो कितना सुख मिलता है वो उसे अपने अनुभव से पता है। और अनुभव क्या है? अनुभव का निष्कर्ष यह है कि कोई भी भौतिक वस्तु हमें सुख नहीं दे सकती है। कुछ समय के लिए हमारा मन उसमें आसक्त जरूर हो सकता है जब तक वो वस्तु प्राप्त न हो, या जब वो नई होती है तो कुछ समय तक हमें सुख दे सकती है, कुछ क्षण के लिए। लेकिन जो वास्तविक सुख या आनंद हम चाहते हैं वो हमको नहीं मिलेगा। तो इसी कारण से एक सच्चा भक्त न तो किसी से मांगता है न उधार लेता है। हम मांगते उधार लेते हैं किस लिए? क्योंकि हमारे पास इस समय कोई वस्तु नहीं है, लेकिन हम एक विशिष्ट प्रकार की इंद्रिय तृप्ति चाहते हैं ये सोचते हुए कि हम इससे सुखी हो जाएंगे। लेकिन एक महान भक्त इन चीजों के बारे में चर्चा नहीं करता। उसका सुख है यस्यात्म रतिरस्य आत्मतृप्तस्य मानवः। उसकी तृप्ति, उसका सुख है वो भगवत सेवा में है, हरि कथा में, हरि नाम में कोई खर्चा नहीं है। तो अपना जीवन कम से कम में निर्वाह करके, ताकि उसकी चेतना फ्री रहे, और उस चेतना को अधिक से अधिक कृष्ण में आविष्ट करने का प्रयास एक भक्त का होता है, सच्चे भक्त का। और इस प्रयास में इस जगत की द्वैतता का आना अवश्यंभावी है। जैसे गर्मी सर्दी, ऐसा नहीं है कि गर्मी है तो भगवान का हम जप नहीं करेंगे, सेवा नहीं करेंगे, या सर्दी आ गई तो मंगल आरती नहीं जाएंगे, या स्नान नहीं करेंगे सुबह उठकर। घर में किसी की मृत्यु हो गई तो हम बस अब भजन बंद कर दें, या फिर घर में कोई बहुत बड़ा सुख मिल रहा है, किसी को बहुत संपत्ति मिल गई तो हरे कृष्णा को भूल जाए। इस जगत में सुख दुख गर्मी सर्दी कुछ भी वस्तुतः आत्मा को स्पर्श नहीं करते हैं, इसलिए आत्मिक आनंद के लिए आत्मिक सुख के लिए सभी चीजें बिल्कुल यूजलेस हैं, व्यर्थ हैं। ये केवल मन को और बुद्धि शरीर को थोड़ा अनुकूल परिस्थिति दे सकती है। तो एक भक्त इस बात को अपने भक्ति के प्रगाढ़ अनुभव से, गहरे अनुभव से समझते हैं, ये अनुभूत विषय है उनका। और इस कारण से इनमें अपने मन को लगाए रखने के बजाय, इनमें चर्चा करने के बजाय अपनी शक्ति को भगवान में लगाने का प्रयास करते हैं। इस चीज को तीसरे स्कंद में भी भगवान कपिल देव बताते हैं कि भक्तों को इतना आनंद होता है भगवान की कथा और कीर्तन में कि वो इस जगत की द्वैतताओं को, सुख दुख मान अपमान को अपने आप ही भूल जाते हैं। तो ये दिव्य ज्ञान में स्थित होने का लक्षण है, और ये हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा, भक्ति के अभ्यास के द्वारा धीरे धीरे हमारी चेतना में आएगा। टेक्स्ट नंबर 23, गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञाय चरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। ब्रह्म में लीन हो जाते हैं मतलब वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। प्रकृति के गुणों से अनासक्त होने का अर्थ है रजगुण तमगुण सत्वगुण के द्वारा प्रेरित होने से व्यक्ति का एक स्वभाव होता है और उसके अनुसार वो कार्य करता है। लेकिन एक भगवान का भक्त शास्त्र अनुमोदित अनुमोदन के अनुसार, शास्त्र में क्या लिखा है उसके अनुसार, और भगवान की भक्ति के लिए क्या अनुकूल है उसके अनुसार कार्य करता है, ना कि गुणों के प्रभाव से उसे क्या करना अच्छा लग रहा है उसके अनुसार। तो ऐसा व्यक्ति जब अपना हर कार्य भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करेगा, तो जैसे भगवान 9वें अध्याय में बताते हैं, शुभ अशुभ दोनों प्रकार के कर्म फलों से वो व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। शुभ अशुभ फलैर एवं मोक्ष से कर्म बंधन है संन्यास योग युक्त आत्मा विमुक्त माम उपैशसी। तो शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों से मुक्त होगा और उसके और अंततोगत्वा भगवान के धाम की प्राप्ति करेगा। तात्पर्य देखेंगे, पूर्ण रूपेण कृष्ण भावना भावित होने पर मनुष्य समस्त द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है और इस तरह भौतिक गुणों के कलमश से भी मुक्त हो जाता है। इसी को चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। हमारे जीवन में जो भी कष्ट है वो वस्तुतः हमारा कल्पना का कष्ट है। क्यों कल्पना का कष्ट है? क्योंकि हम अपने आप को शरीर और अपने मन से, हमारी अपनी पहचान हम अपने शरीर और मन से कर रहे हैं, तो इसलिए शरीर और मन को आने वाले कष्टों को हम अपना कष्ट मान लेते हैं और इसका कोई सलूशन नहीं है भगवान के नाम के अलावा। भगवान के नाम के द्वारा हमारा हृदय शुद्ध होता है और जैसे जैसे हमारा हृदय शुद्ध होगा, हमारा अहंकार कम होगा, तो मिथ्या अहंकार के कम होने पे, या कह सकते हैं पिघल जाने के ऊपर, हमें हमारा जो सारी कठिनाइयां हैं वो सब खत्म हो जाएंगी। कैसे खत्म हो जाएंगी? स्वप्ने यथा प्रतिबोध आग जागृते हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणात्। जिस प्रकार से स्वप्न में कोई देख रहा हो, उसमें कोई परेशानी हो, जग जाने से वो स्वप्न की सारी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं, ऐसे ही अपने संबंध के प्रति जागृत हो जाने से, जो हमारा भगवान के प्रति है, हमारी सारी समस्या निपट जाएंगी। वस्तुतः हमारी एक ही समस्या है कि हम भगवान से अपने संबंध को भूल गए। तो यही बात यहाँ बता रहे हैं कि पूर्ण रूपेण कृष्ण भावना भावित होने से व्यक्ति हर प्रकार के द्वंद से मुक्त हो जाता है, ठीक है, हानि लाभ इत्यादि। वह इसलिए मुक्त हो जाता है क्योंकि वह कृष्ण के साथ अपने संबंध की स्वाभाविक स्थिति को जानता है। फलस्वरूप उसका चित्त कृष्ण भावना मृत से विचलित नहीं होता। कृष्ण आमी कृष्ण दास कर ले ए विश्वास तो और कोई दुख नहीं। अगर व्यक्ति जीवात्मा को विश्वास हो जाए कि मैं कृष्ण का दास हूँ, कृष्ण मोरे प्रभु त्राता जीवे रहोल ज्ञान, कृष्ण मेरे प्रभु हैं, कृष्ण मेरे त्राता हैं, अगर जीव को ये ज्ञान हो जाता है तो जीवात्मा को कोई जीवन में कष्ट नहीं रहेगा। सुख दुख लाभ हानि होगी, लेकिन उससे हम अपनी पहचान करना बंद कर देंगे, इसलिए हम लोग, हमारा जो चित्त है, जो हमारा भक्ति से कभी विचलित नहीं होगा। अतएव वह जो कुछ भी करता है वह आदि विष्णु कृष्ण के कृष्ण के लिए होता है। अतः उसका सारा कर्म यज्ञ रूप होता है क्योंकि यज्ञ का उद्देश्य परम पुरुष विष्णु अर्थात कृष्ण को प्रसन्न करना है। ऐसे यज्ञमय कर्म का फल निश्चय ही ब्रह्म में विलीन हो जाता है और मनुष्य को कोई भौतिक फल नहीं भोगना पड़ता। तो यदि व्यक्ति इस चेतना में स्थित हो कि वो कृष्ण का अंश है, कृष्ण का ही अंश है, कृष्ण का नित्य दास है, तो स्वाभाविक रूप से उसका हर कर्म कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही होगा। जैसे मेरा हाथ मेरे शरीर की सेवा करता है क्योंकि मेरे शरीर से जुड़ा हुआ ये मेरा हाथ है, उसी प्रकार से अगर हम अपने संबंध को जागृत कर लेते हैं भगवद गीता के माध्यम से, हरि नाम के माध्यम से, तो फिर स्वभावतः ये गुण हमारे चेतना में व्याप्त रहेगा कि हम भगवान के दास हैं और ऐसा कोई भी कार्य जो भगवान की सेवा संबंधित नहीं है अपने आप ही उसमें रुचि समाप्त हो जाएगी। तो अब इसके बाद भगवान विभिन्न प्रकार के यज्ञों को बताएंगे और किस प्रकार से कौन लोग यज्ञ करते हैं और उससे क्या लाभ होता है उसकी चर्चा करेंगे। तो हम उसकी चर्चा आगे करेंगे, अभी यहीं पर रखेंगे। हरे कृष्णा।